नूर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक एक सवाल पर आकर वो रुक गई। किताब के पन्नों पर नजरें टिकाए उसने हल्की सी सांस भरी। अब मैं किससे पूछूं? उसने खुद से बुदबुदाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद ही जवाब दिया, चलो गूगल कर लेती हूं। वो उठी और अपना फोन ढूंढने लगी, वही फोन जो उस दिन के बाद से बंद पड़ा था, जिस दिन उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया था, जिस दिन उसकी अपनी ही दुनिया उससे छीन ली गई थी। उसे याद आया उस दिन जब उसके अब्बा की सख्त आवाज गूंजी थी, और उसी पल कहीं दूर से रेहान की आवाज भी उसके कानों तक पहुंची थी। घबराहट में, डर में, टूटते हुए दिल के साथ उसने फोन बंद कर दिया था, और तब से रेहान के पास कोई भी जरिया नहीं था नूर तक पहुंचने का, ना उसकी आवाज सुनने का, ना ही ये जानने का कि वो कैसी है। नूर ने आखिरकार फोन ढूंढ लिया। एक पल के लिए वो ठहर गई, जैसे फोन ऑन करने से सिर्फ स्क्रीन ही नहीं बल्कि बीते हुए जख्म भी फिर से जाग उठेंगे। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और फोन ऑन कर दिया। स्क्रीन जलते ही एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगे। आफताब के जाते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही उस माहौल को थामे हुए थी और उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया हो। रेहान गेस्ट रूम से बाहर निकला। उसकी नज़र सामने ऑफिस की तरफ गई, जहां सादिया खड़ी थी फाइल्स में झुकी हुई। वो सीधे उसके पास चला गया। सादिया, ये सब क्या है? अभी तुमने आफताब से क्या कहा? उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। सादिया ने सिर उठाया और हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ भी तो नहीं, इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, वही साइन कर रही हूं। रेहान ने जबड़े भींच लिए। मैं इन पेपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस बात की बात कर रहा हूं जो तुमने अभी अभी मेरे बारे में कही। सादिया का चेहरा अब सीरियस हो गया। मैंने क्या कहा? तुम ऑफिस क्या करने आई हो? रेहान ने सीधा सवाल किया। सादिया ने बिना एक पल गंवाए जवाब लौटाया, और आप घर क्या करने आते हैं? रेहान एक सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, वो मेरा घर है इसलिए आता हूं वहां, और ये मेरा ऑफिस है। सादिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए मैं यहां हूं। उनकी बात अभी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी अंदर आया। सर, आपने इकबाल मोहम्मद के वकील का पता करने को कहा था, उनका ऑफिस मिल गया है। ठीक है, तुम जाओ, रेहान ने तुरंत बात खत्म की। लेकिन ये नाम सुनते ही सादिया के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया, उसके कान जैसे चौकन्ने हो गए। कौन? इकबाल मोहम्मद? उसने ध्यान से पूछा। रेहान ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। एक क्लाइंट है। अच्छा, सादिया ने हल्का सा चेहरा बनाया। मुझे लगा इकबाल चाचा, नूर के अब्बा। रेहान हल्का सा चिढ़ गया। क्यों, इकबाल नाम सिर्फ एक ही होता है दुनिया में? सादिया मुस्कुरा दी। मुझे पता है, नाम तो बहुत होते हैं। फिर उसने थोड़ा झुककर फाइल बंद की और धीरे से कहा, मगर मेरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। उसकी बात में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कह भी रही थी और छुपा भी रही थी। तभी वकील ने उसे साइन के लिए इशारा किया। मैडम, यहां साइन कर दीजिए। सादिया ने एक नजर रेहान पर डाली और बिना कुछ कहे उससे हटकर वकील की तरफ बढ़ गई। रेहान वहीं खड़ा रह गया, उसकी बातों में छुपे मतलब को समझने की कोशिश करता हुआ। आपने पूरा चेक कर लिया है? वकील ने फाइल आगे बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, सब सही है, सादिया ने बिना झिझक साइन करते हुए कहा। रेहान अब तक खुद को रोक नहीं पाया। ये क्या हो रहा है? सादिया ने पेन बंद किया और फाइल उसकी तरफ सरकाते हुए बोली, अपनी बनिया बचाने की कोशिश। उसकी आवाज शांत थी, मगर उस शांति के अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। वो मुड़ी मगर जाने से पहले फिर रुकी, और हां, उसने वकील से कहा, अगर मेरे साइन चाहिए हो तो मुझे फोन कर लिया करो, ताई मम्मी को परेशान मत किया करो, मैं खुद आ जाऊंगी। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चल दी। रेहान बस उसे जाते हुए देखता रह गया।
अब उसे समझ आ रहा था सादिया क्या कर रही है, और उससे भी ज्यादा वो सब कुछ जानती है, उसके बारे में, नूर के बारे में, घर की हर सच्चाई के बारे में। फिर भी वो चुप है। कुछ देर बाद फरीद खान तेज कदमों से रेहान ही केबिन में आया। सादिया ऑफिस आई थी? उसने सीधा सवाल किया। हाँ आई थी, रेहान ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जवाब दिया। किस लिए? फरीद खान की आवाज में हल्की बेचैनी थी। रेहान हल्का सा मुस्कुराया। अपना हक जताने के लिए, और क्या वजह होगी? फरीद खान की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? अब तक उसने सादिया को बहुत संभाल कर रखा था, हर वक्त ये कहकर कि वो उसके भाई की आखिरी निशानी है। उसी भरोसे पर सादिया ने उस पर आंख बंद करके यकीन किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रेहान भी पहले उसे खास बनाकर रखता था, मगर अब वो नूर के पीछे इस हद तक जा चुका था कि बाकी सब पीछे छूटता जा रहा था। और सादिया अब सब जान चुकी थी, फरीद खान की सच्चाई, रेहाना बेगम की सच्चाई, और रेहान की भी। इसलिए अब वो हर कदम बहुत संभाल कर रख रही थी। रेहान ने फरीद खान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपकी भतीजी से कुछ कह सकूं। उसकी बात में छुपा तंज साफ था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। कहना भी नहीं, फरीद खान ने हल्का सा सोचते हुए कहा, मैं खुद बात कर लूंगा। उसे अच्छी तरह पता था सादिया के साथ कैसे बात करनी है, कहां नरमी दिखानी है और कहां दबाव डालना है। वो मुड़ा और धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल गया। रात का वक्त, अरमान के घर का ड्रॉइंग रूम रोशनी से भरा हुआ था, मगर माहौल में एक अजीब सी खिंचाव थी। वहां मौजूद थे माहिरा, रेहाना बेगम, जुबेदा बेगम, रेहान, और साथ में आफताब और उसकी बहन रिदा। सब बैठे बातें कर रहे थे, मगर हर किसी के मन में अपने अपने हिसाब चल रहे थे। पिछली बार जब अरमान की शादी की बात चली थी तो माहिरा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो अपने भाई का निकाह भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस वक्त सबको जल्दी थी, फैसले भी जल्दी हुए और गलत भी। माहिरा ने रिदा की तरफ देखा, तो क्या सोचा है तुमने रिदा? रिदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, विदेश से मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो मैं वापस आ गई हूँ इंडिया। अब सोच रही हूँ कि भाई का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा है, रेहाना बेगम ने सिर हिलाते हुए कहा, लड़की को बिजनेस की समझ होनी चाहिए। इसी बीच दरवाजा खुला, अरमान अंदर आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर में इतने लोग होंगे, और खासकर आफताब और रिदा। वो एक पल के लिए ठिठक गया। आओ अरमान, रेहान ने उसे देखते ही कहा। अरमान अंदर आया। सबसे पहले उसने आफताब से हाथ मिलाया, फिर हल्के से सिर हिलाकर रिदा की तरफ देखा। रिदा ने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। अरमान ने भी जवाब दे दिया, मगर औपचारिक सा। माहिरा ने बात आगे बढ़ाई, तो अरमान, रिदा याद है? अरमान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान रिदा के लिए नहीं थी। उसे तो याद आ गई वो पहली मुलाकात, जिस दिन वो रिदा से नहीं बल्कि नूर से टकराया था। एक पल में उसका मन कहीं और चला गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। तभी जुबेदा बेगम बोली, हम लोग चाहते थे कि तुम दोनों का रिश्ता हो जाए। माहिरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आखिरी फैसला तुम दोनों का ही होगा, हम बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। आज माहिरा के लहजे में नरमी थी जो पहले कभी नहीं थी। अरमान चुप हो गया। उसकी खामोशी में बहुत कुछ था, सोच, उलझन और शायद कोई अधूरा एहसास। वहीं दूसरी तरफ रिदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आफताब ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, तुम दोनों चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो, जरूरत नहीं, अरमान ने तुरंत कहा। उसके इस जवाब से सबके चेहरे थोड़े सख्त हो गए, जैसे अब वो इनकार सुनने के लिए तैयार हो रहे हों। जुबेदा बेगम ने जल्दी से कहा, बहुत अच्छी लड़की है अरमान। एक पल की खामोशी, फिर अरमान हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर हाँ कर देता हूँ।
उम्मीद करती हूँ मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।